आदरणीय भिक्षु संघ, धर्म प्रेमी सज्जनों, सन्नारियों, एक महान धर्म यज्ञ की पूर्णाहुति है। सचमुच बहुत बड़ा धर्म यज्ञ, जहाँ केवल धर्म की चर्चा ही नहीं, धर्म धारण करने का अभ्यास किया गया। धारण करे तो ही धर्म होता है। धारे तीति धम्म, धारण नहीं करे तो कोरी बातें रह जाएंगी, कोरी चर्चा से लाभ नहीं होता। प्रेरणा मिलती है, मार्गदर्शन मिलता है, लाभ तो धारण करने से ही होता है। किसी प्यासे आदमी से पानी की चर्चा करते रहें, उस बेचारे को पानी पीने को नहीं दें, तो वो पानी की चर्चा उसके क्या काम आई। किसी भूखे आदमी से भोजन की चर्चा करते रहें, भोजन का गुण गाते रहें, रोगी से औषधि की चर्चा करते रहें, औषधि के गुण गाते रहें, भूखे को भोजन नहीं दें, रोगी को औषधि नहीं दें, तो दुर्भाग्य की बात होती है। ऐसे ही धर्म केवल चर्चा का विषय होके रह जाए और धारण करने का कोई उपाय सीखे ही नहीं हम, तो मनुष्य जैसा अनमोल जीवन धोखे में बीत जाए, बहुत बड़े धोखे में। बहुत चर्चा करने वाला आदमी ये समझने लगता है कि मैं धर्म को खूब जान गया, खूब जान गया, अब धर्म पर न जाने कितनी पुस्तकें लिख सकता हूँ, धर्म पर न जाने कितना वाद विवाद कर सकता हूँ, धर्म को न जाने कितने अच्छी प्रकार समझा सकता हूँ। पर बेचारे ने धर्म का रस चखा नहीं, चखा नहीं तो स्वयं प्यासा ही रहा। जो स्वयं प्यासा है वो किसी दूसरे की प्यास कैसे बुझाएगा। अभागेपन की बात हुई। बुद्ध जैसा व्यक्ति लोगों को इस अभागेपन से निकालता है, बाहर निकालता है। बहुत हो गई बातें, बहुत हो गई बहस, बहुत हो गया वाद विवाद, अब कुछ करो ना भाई, धारण करो ना। प्यासे हो तो पानी पियो ना, भूखे हो तो भोजन ग्रहण करो ना, रोगी हो तो औषधि का सेवन करो ना। कोरी चर्चा में क्या मिलेगा। चर्चा इसलिए अवश्य होती है कि बात समझ में आए, धर्म क्या है ये समझ में आए, और धर्म कैसे धारण किया जाए, धारण करने की विधि कैसी है वो समझ में आए, तो प्रेरणा मिल सकती है इन चर्चाओं से, इन धर्म सम्मेलनों से प्रेरणा मिल सकती है, मार्गदर्शन मिल सकता है। पर लाभ तो चलने पर ही होता है, बड़ा लंबा रास्ता है। पर कितना ही लंबा रास्ता क्यों ना हो, लंबे से लंबे रास्ता भी पहले कदम से शुरू होगा। 10,000 मील लंबा रास्ता भी पहले कदम से ही शुरू होगा। जिस व्यक्ति ने पहला कदम भी नहीं उठाया, वो रास्ते की चर्चा करता रह गया, रास्ते की बहस करता रह गया, रास्ते को समझाता रह गया, समझता रह गया, कभी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएगा, पहला कदम ही नहीं उठाया ना। पर जिसने पहला कदम उठा लिया, उससे ये आशा की जा सकती है कि वो दूसरा भी उठाएगा, वो तीसरा भी उठाएगा। यूं एक एक कदम आगे बढ़ते हुए देर सवेर अंतिम अवस्था पर पहुंच जाएगा। तो बड़ी अच्छी बात हुई कि इस धर्म सम्मेलन का प्रारंभ कदम उठाकर किया गया। भले नन्ना सा कदम उठाया और उसे समझा कैसा कदम उठाया है, ये कैसा रास्ता है, ये रास्ता हमें कहाँ ले जाने वाला है। जो कदम उठाया है वो सही उठाया है ना, कहीं गलत तो नहीं उठा लिया। ये कदम ऐसा ही क्यों उठाया, किसी अन्य प्रकार से क्यों नहीं उठाया, इन सब का चिंतन करना, मनन करना, ये धर्म का अंग है। सम्मा संकप्पो धम्म विचयो, धर्म का चिंतन मनन करना, उसका विभाजन करना, टुकड़े टुकड़े करना और विश्लेषण कर करके समझ जाना कि धर्म क्या है, तो उसे ठीक से धारण कर पाएंगे। तो जैसे परम पूज्य गुरुदेव बार बार कहते थे कि सिद्धांत और अभ्यास साथ साथ चलने चाहिए, थ्योरी एंड प्रैक्टिस शुड गो टुगेदर। ये गुरुदेव उबाखिन की जो बात, इतने महत्व की बात। काम करना शुरू कर दिया, वेदना है, मानस का एक अंग है, विज्ञान संज्ञा वेदना संस्कार, ये मानस के चार खंड 10 दिन की साधना द्वारा समझा। ये विज्ञान कैसे काम करता है, ये संज्ञा कैसे मूल्यांकन करती है, ये वेदना कैसे अनुभव कराती है और ये संस्कार कैसे प्रतिक्रिया करता है। ये देखे, जरा जरा से देखे, अभी तो काम शुरू हुआ। तो ये मानस का महत्वपूर्ण खंड जिसे वेदना कहा गया, इसे अनुभव करके ही नहीं रह जाना है, इसे अनुभव किया और प्रज्ञा के साथ अनुभव किया। वेदनाओं का अनुभव तो सभी करते हैं, कौन नहीं करता। किसी अस्पताल में जाके देखो, आए रे मरा रे, मेरा पांव टूट गया रे, मुझे कोई बचाए रे, मैं तो मरा रे, तो अनुभव कर रहा है ना, वेदनाओं को अनुभव कर रहा है, अपने शरीर की वेदनाओं को अनुभव कर रहा है। मुक्त कैसे होगा, सारा संसार रोता है ना, सारा संसार वेदना अनुभव करता है, मुक्त तो नहीं होता ना। तो केवल वेदना ही मुक्त नहीं कर देगी, वेदना तो आधार है, इस आधार पर हम अपनी प्रज्ञा जगाएंगे, संप्रज्ञान जगाएंगे। जो वेदना है वो अनित्य है, देख इसका उत्पात होता है, अरे इसका व्यय हो जाता है, इसका उदय होना, इसका व्यय होना, उदय होना, व्यय होना, ये जानने लगे तो मुक्ति का रास्ता मिल गया। हाय रे मरा रे, वेदना आई रे, वेदना आई रे, दुखद वेदना आई रे, ओ सुखद वेदना आई रे, बहुत अच्छा हुआ रे, बड़ा आनंद आया रे, सभी करते हैं ना। इसमें बुद्ध की क्या देन, क्या दिया भगवान बुद्ध ने, अरे जो रोते हो इन वेदनाओं से और इन वेदनाओं की वजह से खुशियां मनाते हो, सुखद वेदनाओं की खुशियां मनाते हो, दुखद वेदनाओं को लेकर के रोने लगते हो, इसी के तो बाहर निकलना है ना भाई। कहते हैं भगवान ने 84,000 उपदेश दिए, पर कहा ये कि भाई मैंने इतने उपदेश दिए पर मैं तो अपनी ओर से जीवन भर दो ही बात सिखाता रहा, उपदेश बहुत दिए, भिन्न भिन्न लोगों को भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उनकी मनोस्थिति देख करके, उनका बैकग्राउंड देख करके, ये बात ऐसे कहेंगे तो ही लोग समझेंगे। अब इस तरह के लोग आए हैं इनको ऐसे समझाएं, इस बुद्धि के धरातल के लोग आए हैं इनको ऐसे समझाएं, इस तरह के संस्कारों वाले लोग आए इनको ऐसे समझाएं। तो बार बार जो समझाया, भिन्न भिन्न प्रकार से समझाया, कहते हैं समझाई तो दो ही बात, देख भाई ये दुख है, दुख है ना, और देख भाई ये दुख के बाहर निकलने का तरीका है। बुद्ध की सारी शिक्षा इन दो बातों में आ गई, ये दुख है और ये दुख निवारण का तरीका है। तो इस संस्था ने जो पहला धर्म यज्ञ किया परियत्ति और पटिपत्ति का, ठीक ही किया। वेदना है तो दुख है, संप्रज्ञान है तो दुख के बाहर निकलने का रास्ता है। दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, विवट्टगामिनी प्रतिपदा, इसी से आएगी, संप्रज्ञान से आएगी, कोरी बातों से नहीं आती। ये वेदना है, ये दुख है, अरे सुखद वेदना भी दुख है, असुखद अदुखद वेदना भी दुख है। दुखद वेदना तो दुख है ही, स्पष्ट ही दुख है। यं किंच वेदनं वेदयति तंपि दुःखं, 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 दुख ही है। पहला पहला कदम उठाने वाला व्यक्ति इस बात को नहीं समझता, कहता सुख है ना, कहाँ दुख है, इतना आनंद आया, ध्यान करते करते इतना आनंद आया, ऐसा प्रवाह चला, ऐसा पुलक रोमांच हुआ, बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया। आप कहते हैं दुख है, क्या दुख है? तो कोई कहे कि भाई ये समाप्त हो जाएगा ना, इसलिए दुख है। अरे तो समाप्त हो जाएगा तब दुख आएगा, आज कहाँ दुख है, अभी तो नहीं दुख है ना, बड़ा सुख है, आप क्या कहते हैं? नहीं समझ में आता बेचारे को। और ध्यान करते 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 जिसे असुख अदुख कहा, नया नया साधक तो न्यूट्रल है तो यही समझता है कि जहाँ सुख भी नहीं दुख भी नहीं, न्यूट्रल है भाई। भगवान जिसको असुख अदुख कहते थे, बहुत गहरी बात है। ध्यान करते करते विकार निकलते 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 ऐसी अवस्था आती है भीतर, इतनी शांति मालूम होती है, इतनी प्रशुद्धि मालूम होती है, अरे जैसे सब कुछ मिलाया, जैसे नया नया साधक जब उसे एक प्रवाह मिलने लगता है सुखद संवेदनाओं का, तो कहता अरे सब कुछ मिल गया, बड़ा आनंद मिल गया, अरे यही तो आत्मानंद है, परमानंद है, अमुक आनंद है, अमुक आनंद है, बीच की धर्मशाला है, अटक गया बेचारा वहीं। इसी तरह से और आगे बढ़ते हुए ये जो अवस्था आती है, बड़ी शांति मालूम होती है, उसको सुख भी नहीं कह सकते, दुख भी नहीं कह सकते, बड़ी प्रशब्दी है, बड़ी शांति है। तो उन दिनों की भाषा में उसे असुख अदुख कहा। एक और बीच की धर्मशाला आई, पागल आदमी है तो समझेगा, अबोध आदमी है तो बस मिल गया ना, सारा मार्ग मुझे शांति की ओर ले जाने वाला मार्ग था, ऐसी शांति मिल गई, बस यही निर्वाण है, इसी को लोग निर्वाण कहते हैं, यही मुक्ति है। तो सीखेगा जैसे जैसे इस पथ पर आगे जाएगा, संप्रज्ञान का होश रहेगा, प्रज्ञा बनी रहेगी, अरे अभी अनित्य ही है, कितने ही शांत अवस्था क्यों नहीं आ गई, इसमें भी देह उत्पाद होता है, व्यय होता है, उत्पाद होता है, व्यय होता है। देखिएगा अभी तो इंद्रियों का क्षेत्र है, सड़ायतन है, अभी तो नाम रूप है, अभी तो शरीर और चित्त है, मैं नाम रूप के बाहर नहीं गया अभी, ये अवस्था नाम रूप के परे की अवस्था नहीं है, ये अवस्था सड़ायतन के छह इंद्रियों के परे की अवस्था नहीं है, ये इंद्रियातीत अवस्था नहीं है, भवातीत अवस्था नहीं है, लोकातीत अवस्था नहीं है, ये लोकोत्तर अवस्था नहीं है, अभी लोकी अवस्था है। ये बात संप्रज्ञान से जानेगा, क्योंकि संप्रज्ञान का हर कदम उदय व्यय, उदय व्यय, हर वेदना चाहे दुखद है, चाहे सुखद है, चाहे असुखद अदुखद है, उदय व्यय, उदय व्यय तो देखिएगा जो इतनी शांति मालूम हो रही है, प्रश्रब्धि मालूम हो रही है, सुख नहीं दुख नहीं पर बड़ी शांति है, ये भी उदय व्यय। कोई मान्यता माना हुआ आ रहा है, अपनी परंपरा की एक मान्यता है, जैसे सारे शरीर में पुलक रोमांच होने लगा, अपने मान्यता है, ऐसा आनंद आया, लक्ष्य ही आनंद का था, मिल गया ना आनंद, और क्या चाहिए। अटक गया ना बेचारा, बीच की धर्मशाला में अटक गया ना बेचारा। ऐसे ही ये इंद्रिय के क्षेत्र की शांति आई, नाम और रूप के क्षेत्र की शांति आई, अटक गया बेचारा, यही तो है। अरे ये तो चाहते थे और क्या, हमको तो मिल गया, हमको तो अंतिम अवस्था मिल गई। तो भगवान कहते हैं इसे भी देख ध्यान से, ये भी अनित्य है। अरे इस संप्रज्ञान की तो वहां और ज्यादा जरूरत है, वहां उदय व्यय देखेगा तो इस बीच की धर्मशाला में रुकेगा नहीं, आगे बढ़ता जाएगा और वेदना तीत अवस्था में पहुंच जाएगा, वेदनाओं के परे पहुंच जाएगा, वेदनाओं के सारे क्षेत्र से निस्सरण कर जाएगा। वेदना जब तक चलती है तो दुखद का दुख भोगता है, सुखद का सुख भोगता है, और असुखद अदुखद शांत अवस्था आती है तो उसे अंतिम अवस्था मान करके एक मोह मूढ़ता सिर पर चढ़ा लेता है। अज्ञानी है, उसे पूरा होश नहीं आया अभी, किन्हीं मान्यताओं में उलझा हुआ है, कोई दार्शनिक मान्यता उसके सिर पर सवार हो गई, तो ये दार्शनिक मान्यता के अंधेपन को दूर करने के लिए फिर संप्रज्ञान की आवश्यकता। दुख आता है तो लगता है ये तो अनंत है रे, इतना दुख। दुखियारा आदमी कभी नहीं देखता कि ये समाप्त हो जाने वाला है। संसार के जीवन में देखते हैं किसी को दुख आता है तो हाय रे मरा रे, मेरा दुख कैसे दूर होगा रे, मेरा दुख तो दूर होने वाला नहीं, ऐसी अंधेरी गुफा में घुस गया मैं तो इसका अंत ही नहीं दिखता। उस बेचारे को धर्म जाग जाए, अरे कुछ अनंत नहीं है इस संसार में, दुख से दुखद वेदना भी अनंत नहीं है रे, तो थोड़ी सांत्वना मिली उसे, और अंदर देखना शुरू कर दे कि ये जो दुखद अवस्था बाहर आई है, जिसको लेकर तू इतना व्याकुल हो गया, जिसको तू अनंत माने जा रहा है बावलीपन में, अंदर देख क्या हो रहा है। तो बाहर जो स्थिति आई तो देखता है भीतर सुखद एक वेदना चल रही है, शरीर पर एक संवेदना है जो बड़ी दुखद है, जो जिसको हम दुखद कहते हैं क्या है, मन का दुख क्या है, मन का दुख शरीर पर होने वाली दुखद संवेदना ही मन का दुख है। मन का सुख क्या है, शरीर पर होने वाली सुखद संवेदना ही मन का सुख है। अब देखता है ये जो मेरे मन में दुख आया वो है क्या, अंदर देखता है, शरीर और चित्त के क्षेत्र को देखता है, अरे ये दुख है, देख शरीर में भी कितनी दुखद संवेदनाएं जाग रही हैं। अब भी प्रश्न करने लगे, संप्रज्ञान जगाने लगे, उदय होता है व्यय होता है, बड़ा घनीभूत होकर के आया ये दुख, बड़ा घनीभूत होकर के आया ये संवेदना, बड़ी घनीभूत होकर के आई, तो भी धीरज के साथ देखना सीखता है तो अरे देर सबेर निकली जाती है, अनंत काल तक तो नहीं रही ना, तो घनीभूत से घनीभूत दुखद संवेदना को अनुभूति से जानता है, इसका उदय होता है, इसकी एक स्थिति होती है और इसका व्यय हो जाता है। उदय स्थिति व्यय, उदय स्थिति व्यय, काम शुरू हुआ उस बेचारे का, आगे बढ़ता है, देखते ही जाता है ये अनित्य है और मैं प्रतिक्रिया कर रहा हूं, इसका दुख का दुख भोग रहा हूं, भोगता भाव से तो इसे बढ़ा रहा हूं, इसका संवर्धन हो रहा है, भोक्ता भाव नहीं। किसी दुखद संवेदना की वजह से दोमनस्य नहीं जगाऊंगा, चित्त दुर्मन नहीं होगा। दोमनस्य जगाया कि मेरा दुख और बढ़ेगा, तो भगवान ने कहा कि जिस आदमी के शरीर में एक भाला चुभ गया, बड़ा दुखी आ रहा है, एक भाला चुभ गया ना, लेकिन आदमी बावला है, होश नहीं है, तो उसके पास एक भाला और चुभो लेता है कि भाई एक भाले का दुख है, एक भाले का और चुभाएं, दो भाले का दुख भोगें, पागल आदमी होगा ना, अबोध है ना, यही करता है। जब शरीर पर दुखद संवेदना होती है और अपने मानस को दुर्मन बना लेता है, चित्त में दौर्मनस्यता जागने लगती है, तो एक भाला और आ गया ना, अब चित्त की दौर्मनुष्यता का एक भाला और लग गया, व्याकुल आदमी डबल व्याकुल हो गया, कई गुना व्याकुल हो गया। इसी के बाहर निकलने के लिए तो संप्रज्ञान है, और किस लिए संप्रज्ञान है? दूसरा भाला तो चुभने ही नहीं देंगे। अरे एक भाला ही बहुत है भाई, कम नहीं है, ये एक तीर लगा हुआ यही कम नहीं है, दूसरा तीर क्यों लगाएं, दूसरा भाला क्यों लगाएं? दुखद वेदना को दूर मनुष्य वेदना नहीं बनने देंगे, दुखद वेदना को बस दुखद वेदना है ऐसा उसे देखेंगे तो दूर मनुष्यता नहीं आई, तो एक ही पीड़ा हुई, डबल पीड़ा नहीं हुई। अब उसे देखेगा, अगर तटस्थ भाव से देख रहा है, तटस्थ भाव से देख रहा, तो प्रकृति का अपना नियम है, कितना ही घनीभूत सत्य क्यों ना आए हमारे सामने, उसका विभाजन, उसका विघटन, उसका विश्लेषण, उसके टुकड़े टुकड़े होने शुरू हो जाएंगे। संप्रज्ञान यही कराएगा। संप्रज्ञान का जो रास्ता भगवान ने बताया वो ये कि इस उत्पाद व्यय को हम अंतिम अवस्था तक देखते चले जाएं। अरे वैसे तो कहने को कह सकते हैं, देख मेरा हाथ यहां था ना, अब यहां चला गया, तो देख यहां उदय हुआ, यहां इसका व्यय हो गया, बात तो सही है, बात तो सही है, पर बुद्ध तो ये नहीं सिखाने के लिए आए। अंतर मन की गहराइयों तक की 3.5 हाथ की काया के अंदर देख किस तरह से उत्पाद होता है, व्यय होता है, उदय होता है, व्यय होता है, उत्तरानुभूति पर तुझे सम्यक ज्ञान, सम्यक प्रज्ञा स्वयं हुई, अपने आप हुई, अपनी अनुभूतियों पर हुई। अनुभूति से कैसे होगी? जब तक अंदर वेदना से अनुभूति स्वयं नहीं कर लेगा तो अनुभूति से कैसे होगी? फिर बुद्धि विलास, फिर एक परंपरा की मान्यता। अरे इन परंपरागत मान्यताओं को तोड़ने के लिए कोई व्यक्ति बुद्ध बनता है, उलझे रह जाते हैं मान्यताओं में। जो आदमी जानता और देखता नहीं वो आदमी एक दर्शन शास्त्र खड़ा करता है, ये बुद्ध की वाणी है। जो आदमी जानता है देखता है वो सारे दर्शनों को ठुकरा देता है, एकमात्र सम्यक दर्शन रह जाता है उसके सामने, माने अनुभूति से जानतो पश्यतो, तब दिट्ठि नहीं तब सम्मा दिट्ठि हो जाएगी। ए जानतो ए पश्यतो, दिट्ठि ही दिट्ठि है, कितनी सही बात क्यों ना हो, तो ये अनित्य भी दिट्ठि बन के रह जाएगी ना। तुमने जाना नहीं ना, तुमने जानतो पश्यतो कहां किया? विपश्यना के द्वारा जानेगा तब कहेगा कि अनित्य है, देख उत्पाद होता है, देख व्यय होता है, तो कोई दर्शन नहीं बना, कोई फिलोसफी नहीं बनी, कोई मिथ्या दिट्ठि नहीं हुई, सम्मा दिट्ठि हो गई। अपने अनुभूति से सच्चाई को यथाभूत देख रहा है, उत्पाद है व्यय है, उत्पाद है व्यय है, ये सम्यक दर्शन होना शुरू हुआ, ये संप्रज्ञान जागने लगा, तो देखेंगे घनीभूत घनीभूत रह नहीं सकता, उसके टुकड़े होने लगते हैं, टुकड़े होने लगते हैं, कितनी ही पीड़ा क्यों न हो, घनीभूत पीड़ा है, उसके भीतर एक तरंगों का प्रवाह मालूम होने लगेगा, उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय, सब्बो लोको पकंपितो पकंपितो, सब्बो प्रज्वलितो लोको सब्बो लोको पकंपितो, सारा का सारा संसार केवल प्रज्वलन है और प्रकंपन है, इसे छोड़कर कुछ नहीं। अब अंदर देखने लगा, ये तो कहने की बात है, सारा संसार प्रज्वलन है प्रकंपन है कह दिया किसी साइंटिस्ट ने कह दिया, अच्छा भगवान बुद्ध ने कह दिया इसलिए हम मानते हैं, या हमारा अमुक शास्त्र कहता है इसलिए मानते हैं, जाना नहीं ना, जान तो पश्यतो तब सम्मा दिट्ठि होगी, अन्यथा दिट्ठि ही दिट्ठि रह जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा। अब जानने लगता है, देख ये जो घनीभूत पीड़ा लगती थी ना, अब देख इसमें भी उदय वे उदय वे उदय वे प्रकंपन ही प्रकंपन, सब बोलू को पकंपितो पकंपितो पकंपितो, देख रहा प्रकंपन ही प्रकंपन, उदय वे और कुछ नहीं इसमें, क्या द्वेष करेगा, क्या दुर्मन करेगा, सारा द्वेष दूर होना शुरू हो जाएगा, निकलते ही निकलते छुटकारा हो जाएगा। ऐसे ही काम करते करते जैसे अभी का सुखद संवेदना आई, बड़ी धारा प्रवाह, तरंग ही तरंग, अब बड़ी सुखद तरंग ही तरंग, तरंग ही तरंग सारे शरीर में, बड़ा पुलक बड़ा रोमांच, तो उसको भंग ज्ञान कहते, माने बाहर भीतर कोई सॉलिडिटी रही नहीं गई, भंग ही भंग, सारा भंग हो गया, उस भंग ज्ञान पर पहुंचा, भंग अवस्था पर पहुंचा, तो एक खतरा आ गया। तो समझदार आदमी होता है, उस खतरे को देखता है, ना समझ होता है तो उसमें डूबने लगता है। समझदार होता है उसे खतरा मान करके उससे बचता है। भंग ही भंग हुआ, बड़ा बड़ा चारों ओर प्रवाह ही प्रवाह चलता है, सुखद लगा, बड़ा अच्छा लगा, तो उसका रस स्वादन करने लगा। सुखद वेदना है ना, आस्वादन करने लगा, आस्वादन कर रहा, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, अरे ये तो और मिले, ये तो और मिले, ये तो और मिले, ये तो और चाहिए। तो भगवान होश जगाते हैं, कहते हैं सुन, देख तो सही, ये आदिनव है। बड़े खतरे की अवस्था आ गई, न जाने कितने जन्मों से, अनंत जन्मों से ऐसी सुखद संवेदनाएं तुझे मिली, और अनंत जन्मों में तू इन संवेदनाओं के प्रति राग जगाता रहा, राग जगाता रहा, अपने बंधन बांधता ही रहा रे, बांधता ही रहा रे। फिर ये काम शुरू कर दिया, और विपश्यना के नाम पर शुरू कर दिया, मुक्ति के नाम पर शुरू कर दिया। बड़ी सुखद संवेदना आई, उसका रसास्वादन करने लगा, आस्वादन करने लगा। इससे बढ़ करके खतरा और क्या होगा एक समझदार आदमी के लिए? भय है, बड़ी भयावह स्थिति है, आदिनव स्थिति है, भय स्थिति है। अरे बाबा, इसके बाहर निकलना चाहिए, मुंचित कम्यता, इसके बाहर निकलना चाहिए, इससे मुक्त होना चाहिए, निस्सरण करना चाहिए। कैसे निस्सरण करेगा? ये अनित्य है, कितने ही सुखद क्यों न हो, ये अनित्य है। देख, इसमें उत्पाद होता है, इसमें व्यय होता है, उत्पाद होता है, व्यय। बस बाहर निकलने लगा ना, और बाहर निकलते निकलते तो परले तट पर पहुंच गया। सारे के सारे वेदना के भव सागर को पार करके परले तट पर पहुंच गया, निर्वाणिक अवस्था पे पहुंच गया। संज्ञा वेदयत निरोध, उस निरोध अवस्था पर पहुंच गया जहां वेदना का नामो निशान नहीं, संज्ञा का नामो निशान नहीं, अरे विज्ञान का भी नामो निशान नहीं, ये सारे शरीर और चित्त का नामो निशान नहीं, उसके परे की अवस्था है सड़ायतन निरोध। सारी छह इंद्रियां निरुद्ध हो गई, कहां से वेदना आएगी? सड़ायतन निरोध भस्म निरोधो, भस्म निरोध वेदना निरोधो, है ही नहीं वेदना। जो व्यक्ति निर्वाणिक निरोध अवस्था में जाता है, गया कि नहीं गया, उसको जांचने का अनेक तरीकों में से एक तरीका ये कि इसकी छह इंद्रियां काम कर रही है कि नहीं काम कर रही। अगर कोई भी इंद्रिय काम कर रही है, अभी निरोध अवस्था नहीं मिली, निर्वाण अवस्था नहीं मिली, किसी बीच की धर्मशाला में अटका हुआ है, तो भाई इन वेदनाओं के पार जाए, ये काम कौन कराएगा? संप्रज्ञान कराएगी। दुखद वेदना आएगी तो भी जानेगा, देख ये वेदना है, और ये वेदना का उत्पाद होता है, देख इसका व्यय होता है। सुखद वेदना आएगी, कितनी ही लहरी लहरे सुखद क्यों ना हो, उत्पाद होता है, व्यय होता है। बहुत शांत अनुभूति होगी, आगे जाकर के प्रश्रब्धि की अनुभूति हो रही है, तो उसमें भी देखेगा थोड़ा ऑसिलेशन चल रहा है, इसमें भी देख उत्पाद हो रहा है, व्यय हो। देखना सीखेगा ही नहीं तो केवल बुद्धि से कह के रह जाएगा, उस प्रश्रब्धि अवस्था में भी अनित्यता है। बुद्धि कहती है, भगवान बुद्ध ने कहा इसलिए हमने मान लिया, हमारे त्रिपिटक कहती है इसलिए हमने मान लिया, हुआ क्या इससे? अनुभव नहीं हुआ ना। पच्चनुभूति, प्रत्यक्ष अनुभव हो, अपने को प्रत्यक्ष अनुभव हो तो संप्रज्ञान है, नहीं संप्रज्ञान नहीं धोखा है। तो संप्रज्ञान के नाम पर किसी धोखे में नहीं आ जाए, संप्रज्ञान को सही रूप में समझेंगे तो बुद्ध की पूरी शिक्षा आ गई। वेदना, जो भी वेदना है, सुखद हो, दुखद हो, असुखद हो, ये दुख है। संप्रज्ञान दुख के बाहर निकलने का रास्ता है, जो हमको उस निरोध अवस्था पर पहुंचा देगा, निर्वाण अवस्था पर पहुंचा देगा। और सारे जीवन भर इस व्यक्ति ने यही सिखाया, ये दुख है, ये दुख के बाहर निकलने का तरीका है। और निकम्मी बातों में लोगों को उलझाया नहीं, अरे बहुत थे उलझाने वाले, कब कब से उलझे हुए लोग, और उलझे ही जाते हैं। ये भव संसार इसी उलझन की वजह से चलता है, धर्म के नाम पर, साधना के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर, न जाने कितनी उलझने चलती है, और आदमी समझता है कि मैं ठीक रास्ते चल रहा हूँ, और बेचारा भव चक्र ही भव चक्र, दुख चक्र ही दुख चक्र, लोक चक्र ही लोक चक्र। कहता है धर्म चक्र जगा दिया हमने, क्या धर्म चक्र जगा दिया तूने? संप्रज्ञान जागा तो धर्म चक्र जागा, अनुभूति के स्तर पर अनित्य बोध जाग गया तो अपने आप दुख बोध जाग जाएगा, अपने आप अनात्म बोध जाग जाएगा, उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। अनित्य बोध जागे, ये रूप, ये नाम, ये शरीर, ये चित्त, ये छह इंद्रियां अनित्य है, अनित्य है। बुद्ध ने कहा इसलिए नहीं, कोई शास्त्र कहता है इसलिए नहीं, हमारे गुरु महाराज कहते हैं इसलिए नहीं, मुझे अनुभव हो रहा है, देख मुझे अनुभव हो रहा है, ये अनित्य है, ये अनित्य है। तो दुखद का दुख कैसे भोगेगा, सुखद का सुख कैसे भोगेगा, उस शांत अवस्था को जो अभी अंतिम अवस्था नहीं है उसको अंतिम अवस्था कैसे मान लेगा। बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा और निस्सरण निरोध अवस्था पर पहुंच जाएगा, कोई दुनिया की शक्ति उसे रोक नहीं सकती, अपने बल पर पहुंच जाएगा, धर्म का सहारा मिलेगा, रास्ता मिलेगा और पहुंच जाएगा वहां तक। तो भाई ये दो शब्द वेदना और संप्रज्ञान, इन दोनों पर बात शुरू की तो समझो कि बुद्ध की सारी बात आरंभ हो गई। तो ठीक ही कहा उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कि ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, इतनी जो बातें की है तो शुरू हुआ है। अरे इस वेदना को समझते 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 ही वेदनातीत अवस्था पर पहुंचोगे, इस संप्रज्ञान को समझते 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 ही संप्रज्ञानातीत अवस्था को पहुंचोगे। संप्रज्ञान के परे की अवस्था है वो, निर्वाण में संप्रज्ञान की जरूरत नहीं, उदयव्य नहीं होता वहां। तो जितना उदयव्यय का क्षेत्र है वो संप्रज्ञान का क्षेत्र है, और जहां उदयव्यय नहीं है वहां संप्रज्ञान की बात खत्म। उस समय जो ध्यान चलते थे भारत में, 8 ध्यान, आज तो उनके नाम भी भूल गए भारत के लोग, इतने गहरे ध्यान, 8ों ध्यान इस व्यक्ति ने भिन्न भिन्न लोगों से जाके सीख लिया, फिर भी कहा मुझे मुक्त अवस्था नहीं आई अभी। तो मुक्त अवस्था कैसी आई, ये संप्रज्ञान अपने भीतर जागा, ये विद्या उदय व्यय की देखनी आई, तो मुक्त अवस्था पर पहुंच गए, और मुक्त अवस्था पर पहुंच गए तो उन 8ों ध्यानों को बदल दिया, वो ध्यान जो लोकीय ध्यान थे उनको लोकोत्तर ध्यान कर दिया, उसके साथ संप्रज्ञान जोड़ दिया। संप्रज्ञान जोड़ दिया तो 4थे ध्यान में ही निरोध अवस्था आ गई, अनंत की निरोध अवस्था आ गई। संप्रज्ञान के बिना ध्यान ध्यान नहीं, संप्रज्ञान के बिना मुक्ति का मार्ग मुक्ति का मार्ग नहीं। तो अच्छी बात है, इस बात को समझने के लिए ये एक धर्म सम्मेलन हुआ, थोड़ा थोड़ा काम किया, थोड़ा थोड़ा समझना शुरू किया। लंबा रास्ता है, क्या हुआ लंबा रास्ता है, तो हमें कहा है कि जल्दी है भाई, जितने दिन है काम करेंगे, कालंग आगमे ही है। हमने तो बुद्ध कहते हैं, हमने तो तुम्हें सिखा दिया कि तुम आतापि संपजानो सती मां बनो, अब परिणाम जब आएंगे तब आएंगे, देर से आएंगे सवेर आएंगे, जब आएंगे तब आएंगे, कालंग आगमे ही आए, समय जब आए हमारे काल आ जाए वो समय आ जाए चाहे, और ये जो हम साधना कर रहे हैं इसका काल आ जाए, निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाए, कोई सा भी आ जाए, निर्वाण का मतलब मरना नहीं। भारत के लोग बहुत घबराए, पहले पहल सिखाने लगा, यहाँ कहा तो किसी को कह दिया मंगल वचन में कि तुझे शीघ्र निर्वाण प्राप्त हो, तो अरे बाबा बाबा आपने मुझे श्राप क्यों दे दिया। यहाँ निर्वाण शब्द मृत्यु के लिए प्रयोग में होने लगा, जीते जी निर्वाण की अनुभूति हो सकती है ये बात ही ये देश भूल गया, कल्पना ही नहीं कर सकता कि जीते जी निर्वाण की अनुभूति कैसी होगी, निर्वाण तो मरने को कहते हैं ना, तो आप तुम्हारा मरना मनाने लगे, दुर्भाग्य देश का। अच्छी बात, फिर समय आया, फिर जागा, अच्छी बात है। कभी कभी क्योंकि अंधेरा, बहुत दिनों का अंधेरा है ना, तो कभी कभी प्रश्न करते हैं लोग तरह तरह के, जब से आया हूं तब से अनेक प्रकार के प्रश्न सामने आते चले गए। तो एक प्रश्न कि आपकी ये बात सारी बात हमें बड़ी अच्छी लगती है, सचमुच आप शुद्ध धर्म सिखाते हैं, शील में संप्रदाय की क्या बात है, अब समझने लगे हम इसमें संप्रदाय की क्या बात है, सबका है, और समाधि वो भी सांस के सहारे समाधि, इसमें संप्रदाय की क्या बात है, खूब समझते हैं, और प्रज्ञा ऐसी प्रज्ञा जो हमारे भीतर सच्चाई को देखकर हमारे विकारों को दूर कर दे, हमारे अंतर मन के स्वभाव को जो बिगड़ा हुआ उसे सुधार दे, इससे अच्छी क्या बात होगी, इसमें संप्रदाय क्या बात है, खूब समझते हैं। लेकिन गुरु जी एक बात ठीक नहीं, आप ये जो बार बार बुद्ध बुद्ध कहते हैं और बार बार बुद्ध का ही उदाहरण देते हैं, तो भाई क्या करूं, बुद्ध का नाम लेना बंद कर दो तो तुम खुश हो जाओगे, ये बुद्ध का बताया हुआ मार्ग है इस बात को छिपा दूं कहीं तो तुम खुश हो जाओगे, तो भाई तुम्हें खुश करने के लिए तो नहीं आया मैं इस देश में। जिस तरह मैं दुखों में डूबा हुआ और कैसे दुख के बाहर निकला, तो मन में ऐसी एक धर्म संवेग जागा, सभी तो दुख में डूबे हुए हैं रे, कैसे दुख के बाहर आए। एक रास्ता है जिससे आ सकते हैं, नहीं पता बेचारों को, उलझे भी हैं, तो उस बताने के लिए आया, तुम्हें खुश करने के लिए नहीं। तुमको ये अच्छा लगता है इसलिए यही दूं, तुमको ये अच्छा लगता है इसलिए ऐसा ही कहूं, तो भाई तुम्हारा कल्याण नहीं होगा ना। क्यों चिढ़ है तुम्हें बुद्ध के नाम से, ये बुद्ध के उदाहरण से क्यों चिढ़ है? तो भला आदमी है, हमें कहता है कि गुरुजी हमें चिढ़ नहीं है, बुद्ध तो हमारे देश के महापुरुष हुए, हम उनको अपना अवतार मानते हैं। लेकिन देखिए जब बुद्ध बुद्ध होता है तो फिर संप्रदाय हो गया ना, ये भी तो एक संप्रदाय हो गया ना। जो व्यक्ति स्वयं संप्रदाय में डूबा हुआ हो, उसको संप्रदाय के रंगीन चश्मे में सब कुछ संप्रदाय ही संप्रदाय दिखेगा, क्या करे। तो उसे समझाते हैं कि देख भाई, किसी व्यक्ति में धर्म जागता है, जागा कि नहीं जागा, उसके मापने का एक मापदंड होता है, और दो सद्गुण हैं जिनसे मापा जाता है कि इस आदमी में ये दो सद्गुण आए कि नहीं। इस दो सद्गुणों वाला व्यक्ति दुर्लभ होता है। द्वि पुग्गला दुर्लभा लोकस्मिन, क्या पुग्गला, एक तो ये कि पुग्गकारी और एक कतन्यो कतवेदी, ये दो बड़े दुर्लभ होते हैं। धर्म के गुण है ना, पुग्गकारी बिना कुछ अपने लिए कामना किए हुए आगे होकर के पहल करके सेवा कर दे, बदले में कुछ चाहिए ये भाव नहीं, नहीं तो पुब्बकारी कैसे होगा, पहले सोचेगा ओ ये करूंगा ना तो ऐसा मुझे मिल जाएगा, ये करूंगा ना तो ऐसी मेरी प्रसिद्धि हो जाएगी, बड़ा गुरु बन जाऊंगा मैं, इतिहास में मेरा भी नाम लिखा जाएगा, ये भी एक ऐसा गोइन का हुआ, तो बावला गोइन का है ना, उसे होश नहीं है। तो पुब्बकारी नहीं, देना है, लोक कल्याण होना है, औरों का क्या भला होता है, इस दृष्टिकोण से केवल दे रहा है तो पुब्बकारी। अरे मुझे कैसे ऐसे हुआ रे, मुझे कहाँ से मिला, मुझे किसने दिया, तो कृतज्ञता के भाव से भाव विभोर हो जाएगा, तो धर्म आया इस व्यक्ति में, अन्यथा धर्म नहीं आया। ऐसी परंपरा में जन्मा कि जहां पर ये सारी बातें अपने परम पूज्य गुरुदेव के पास जाकर के ये विद्या सीखी, तो सिद्धांतों के स्तर पर जितनी बातें हैं, वीतराग बनो वीतद्वेष बनो, कोई मुझे नई बात लगी नहीं। अरे ये तो हम रोज गीता में पढ़ते हैं ना, रोज उपनिषदों में पढ़ते हैं ना, राग मत करो, द्वेष मत करो, मोह मत करो, इस परंपरा से आए हुए किसी भी व्यक्ति के लिए नई बात नहीं, न ब्राह्मणी परंपरा से आए व्यक्ति के लिए नई बात होगी, न कोई जैन परंपरा से आए व्यक्ति के लिए नई बात होगी, और न किसी सिख परंपरा से आए व्यक्ति के लिए नई बात होगी, और न किसी बाहर किसी भी ईसाई परंपरा से आए, कहीं से भी आए, चित्त को निर्मल करने की बात कैसी पराई बात लगेगी, गलत बात कैसे लगेगी। इसीलिए पूज्य गुरुदेव बार बार कहा करते थे, द ग्रेटेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ ऑल रिलीजन्स इज प्योरिटी ऑफ माइंड, इसमें आके सब एक हो जाएंगे। चित्त को निर्मल करना है, इसमें कौन संप्रदाय कहेगा, कौन परंपरा कहेगी चित्त को निर्मल मत करो भाई, चित्त को निर्मल, उसमें सब कहेंगे करो, तो कोई नई बात नहीं लगी। लेकिन फिर भी इतनी नई बात मिल गई, कितनी बड़ी नई बात मिल गई, क्या नई बात मिल गई कि अब तक तो खाली सुनते ही थे वितराग बनो, विद्वेष बनो, वित मोह बनो, अनासक्त बनो, स्थित प्रज्ञ बनो, कभी जाना ही नहीं क्या स्थित प्रज्ञ होता है, कैसे बने, बनना तो नहीं सिखाया ना। तो आते हैं कोई कोई भाई, बेचारे बुरी नीयत से नहीं, उनकी अपने मात समझ में आई कि देखिए आप ये कहते भी हैं कि विपश्यना तो बुद्ध की मोनोपोली नहीं है, विपश्यना तो वेदों में भी है, बिल्कुल ठीक, ऋग्वेद में विपश्यना है, अथर्ववेद में विपश्यना का जिक्र है यो विश्वाभिविपश्यति भुवना, तो ऋग्वेद का मंत्र है ये, विपश्यना है, वहां पर विपश्यना की बड़ी प्रशंसा है, बहुत कुछ है। गीता में विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षु से, अनुपश्यना नहीं करता है तो मूढ़ है, करता है तो मूढ़ नहीं है, ज्ञान चक्षु खुल गए, है ना विपश्यना की चर्चा। ऐसे ही जैन आगमों में आयत चक्षु लोक विपश्यी, जिसके चक्षु खुल गए, ज्ञान चक्षु खुल गए, वो विपश्यी हो गया, उसको सारे लोक में विपश्यना होने लगी, अंदर भीतर उसके पाए सब जानता हूँ, खूब समझता हूँ, लेकिन करना तो नहीं आया ना, नहीं मिले ना मुझे उस परंपरा से। जो जो लोग आए हैं वो सोच के देखें कि जिस जिस परंपरा के मानने वाले हैं उस परंपरा में नहीं मिला ना। हम नहीं कहते कि उस परंपरा के संस्थापकों ने, महापुरुषों ने ये विद्या का उपयोग नहीं किया होगा, किया ही होगा, हम क्यों कहें नहीं किया, जरूर किया होगा। हम नहीं कहते कि उन्होंने सिखाया भी नहीं होगा, हो सकता है सिखाया भी हो, लेकिन ये तो सत्य है ना कि लुप्त हो गया, नहीं मिला ना, किसी परंपरा से भी विपश्यना नहीं मिली ना। अरे जिस परंपरा ने संभाल के रखा, बड़ी कृतज्ञता उस महापुरुष के प्रति कि उसने इस अच्छी तरह से इस विद्या को समझाया। केवल अपने ही मुक्त करके रह जाता तो बुद्ध बुद्ध नहीं होता, सम्यक संबुद्ध नहीं होता। कितनी करुणा से, कितनी मैत्री से बांटता चला गया, बांटता चला गया, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय, देना है केवल, बदले में कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए उसे बदले में। और फिर ऐसे लोग तैयार करता चला गया जो कि उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी बांटते चले गए। बुद्ध के प्रति कृतज्ञता इस बात की कि केवल विपश्यना की प्रशंसा करके रह जाता, केवल ये कह के रह जाता कि विपश्यना से ही मुक्ति मिलेगी, संप्रज्ञान से ही मुक्ति मिलेगी, तो एक और बुद्धि विलास होता, एक और अंधमान्यता होती, मान रहे हैं कुछ नहीं लाभ होता। स्वखातु ऐसे टुकड़े टुकड़े करके धर्म को समझा दिया, इस तरह से काम करोगे तो ये मुक्त अवस्था प्राप्त हो जाएगी। इतना समझा करके किसी धर्मशास्त्र में नहीं, तो कहते हैं आपने जो अनुसंधान शुरू किया, रिसर्च शुरू किया, बुद्धवाणी पर ही क्यों किया? अरे भाई सब पर करेंगे, लेकिन किसी वाणी में, किसी शास्त्र में इतनी डिटेल से विपश्यना की बात है ही नहीं ना। जिस व्यक्ति ने तो जिस समय ये बुद्ध बना और जिस समय इसने अंतिम सांस छोड़ा, 45 वर्षों तक विपश्यना छोड़ के कुछ सिखाया ही नहीं ना। ये दुख है, ये दुख के बाहर निकलने का उपाय है, ये वेदना है, ये संप्रज्ञान है, ये तो सिखाया उस आदमी ने। तो कितने भिन्न भिन्न प्रकार से समझाया इस बात को, कितने प्रकार से समझाया, इस तरह का आदमी ऐसे ही समझेगा, इस तरह का आदमी ऐसे ही समझेगा, इस धरातल का आदमी ऐसे ही समझेगा, वो सारा हमारे पास है ना, उपलब्ध है ना। बड़ी कृतज्ञता का भाव जागता उस महापुरुष के प्रति, कितना अच्छी तरह समझाया, स्वखातो। और बड़ी कृतज्ञता का भाव जागता है उस आचार्य परंपरा के प्रति जिन्होंने इसे शुद्ध रूप में कायम रखा। ने हजार समझाया हो हमारे क्या काम का, हमको तो नहीं मिलता ना, कायम रखा पीढ़ी दर पीढ़ी। और इस पीढ़ी के ज्वाजल्यमान नक्षत्र सियाजी उबाखिन, अरे उनसे प्राप्त हुआ, बुद्ध से चला, इस बुद्ध पुत्र से मुझे प्राप्त हुआ, और कोई कहे इनका नाम भी न लो तो क्या करूं, उस बेचारे की समझ पर दया आती है, बेहोशी है उसे, होश नहीं है, जरा भी होश नहीं है। अरे जरा जरा सी सामान्य बातों में भी हम साइंस का पाठ पढ़ रहे हैं और थियोरी ऑफ ग्रेविटी की बात आई, और कहीं न्यूटन का नाम मत ले लेना, थ्योरी ऑफ ग्रेविटी की बात करो, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात आई, खूब समझाएंगे, आइंस्टीन का नाम मत ले लेना। अरे बावले लोगों, इतनी ऊंची बात जिस व्यक्ति ने सिखाई और करना सिखाया उसका नाम ना ले, क्या हो गया इस देश को, क्या हो गया इस देश के लोगों को जो अपने को धर्मवान कहते हैं और इस कदर संप्रदाय में उलझ गए कि जिस व्यक्ति ने मुक्ति का मार्ग दिया और हमने चक्के भी देखा, सचमुच इस रास्ते मुक्ति होने वाली है, देख मेरा राग कम हो रहा है ना, मेरा द्वेष कम हो रहा है ना, मेरा मोह कम हो रहा है ना, उसके प्रति कृतज्ञता जागने तो दूर, उसका नाम तक न सुनना चाहें, दुर्भाग्य की बात ही है ना। तो जो जो समझदार हैं, जो धर्म में आगे बढ़ रहे हैं, इसी एक मापदंड से मापे जाएंगे, कथन्यू। कतन्यू है कि नहीं, कृतज्ञता है कि नहीं? अरे जिन लोगों ने इसे संभाल के रखा उनके प्रति कृतज्ञता, इस वाणी को संभाल के रखा, दोनों बात, पटिपत्ति को संभाल के रखा सदियों तक, परियत्ति को संभाल के रखा सदियों तक। ये परियत्ति नहीं होती तो फिर संदेह होता, क्या सचमुच बुद्ध ने ऐसा कहा, क्या सचमुच बुद्ध ने ऐसा कहा, या कोई गलत काम कर रहे हैं। आज हमारे सामने ये परियत्ति भी है, सारा का सारा उनकी वाणी किस कदर लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी संभाल करके रखी। मन कृतज्ञता से भरता है। कोई लिखा पढ़े नहीं, कोई प्रेसिस नहीं, इस तरह के टेप रिकॉर्डर नहीं जिनमें सारी बात आ जाएगी, कंप्यूटर नहीं, अरे याद ही करती है ना। ये सूत्रधर है, सारे सूत्रों को याद किए हुए है। ये विनयधर है, सारी विनय को याद किए हुए है। ये अभिधम्मधर है, सारी विनय को याद किए हुए है। अरे त्रिपिटकधर है, ऐसा महान देश कि जहाँ सारा त्रिपिटक किसी को कंठस्थ है। कितना बड़ा महान साहित्य है, छोटा नहीं, इतना महान साहित्य एक आदमी याद करके बैठा हो तो खुद टेप रिकॉर्डर हो गया, कंप्यूटर हो गया, सब कुछ कंप्यूटर हो उस आदमी में, और उनके प्रति कृतज्ञता भी नहीं जागे, उनके प्रति कोई एहसान भी नहीं जागे मन में, तो भाई धर्म नहीं सीख रहे। फिर तो एक टेक्नीशियन आया बर्मा से, उस टेक्नीशियन के पास हमने टेक्निक सीख ली। धर्म सीखना है भाई, और धर्म सीखना है तो ये दोनों गुण जगाने ही पड़ेंगे, कतन्यु और पुपकारी। हमको जो प्राप्त हुआ कैसे औरों को प्राप्त हो जाए, औरों को प्राप्त हो जाए बदले में हमें कुछ नहीं चाहे। बहुजन हिता ये बहुजन सुखा ये लोका अनुकंपा है, केवल अनुकंपा है, लोगों का कल्याण हो जाए, लोगों का भला हो जाए, अधिक से लोगों का भला हो जाए, तो समझना चाहिए कि ये विपश्यना कुछ काम करने लगे, हमारा कुछ कल्याण होने लगा। इन दो मापदंडों से अपने आप को मापते रहेंगे, काम तो शुरू किया है। कतई आवश्यकता नहीं अपने को बौद्ध कहने की। जो जैन है अपने को जैन ही कहते चले जाएं, सारे जीवन भर कहते चले जाएं, जो हिंदू है वो हिंदू ही कहते चले जाएं, जो क्रिश्चियन है क्रिश्चियन ही कहते चले जाएं, मुसलमान अपने को मुसलमान ही कहते चले जाएं, प्रबुद्ध हिंदू बने, प्रबुद्ध मुसलमान बने, प्रबुद्ध ईसाई बने, अरे प्रबुद्ध आदमी बने। जो प्रबुद्ध हो गया, जिसके भीतर बोधि जाग गई, अच्छा आदमी हो गया, भला आदमी हो गया, उनको इन नामों से क्या पड़ा है। भगवान बुद्ध ने तो किसी को बौद्ध नहीं बनाया ना, किसी को बौद्ध नहीं बनाया, धार्मिक बनाया। धम्मठो धम्मचारी धम्म विहारी धम्मिको, यही सिखाया। जो नाम जो धारे हुए था वो वैसे नाम धारा रहे। मोगलायन ब्राह्मणी वर्ग का एक नाम है, मोगलायन को बुद्धायन तो नहीं किया ना, कात्यायन कात्यायन को बुद्धायन तो नहीं किया ना, कात्यायन कात्यायन रहा, काश्यप काश्यप ही रहा। प्रबुद्ध हो गया, होश आ गया, मुक्त हो गया। अरे मुक्त होना प्रमुख बात है, नाम बदलने में क्या पड़ा है। तो मत घबराओ, किसी को यहाँ संप्रदाय में नहीं दीक्षित किया जाता, धर्म में दीक्षित किया जाता है। धर्म में दीक्षित हो जाओगे कल्याण हो जाएगा, धर्म में दीक्षित नहीं होगे हजार नाम का लेबल लगाते फिरो कुछ नहीं मिलने वाला है। ये बात, इतनी बड़ी बात उस गुरुदेव से हमें मिली, ऐसे संत पुरुष से, ऐसा गृहस्थ संत ढूंढे नहीं मिले, ऐसे व्यक्ति से मिले जिसको जरा सी इस बात की कामना नहीं कि इस आदमी को कैसे मैं बौद्ध बना लूं, ये आदमी कैसे सीख जाए इस विद्या को, अरे बड़ा कल्याण होगा, इसके समाज के लोगों का कल्याण होना शुरू हो जाएगा, ये एक आदमी सीख जाएगा इसके जरिए इसके समाज के लोगों को, अरे बर्मा में कितने भारतीय हैं अंधेरे में कुछ नहीं पता इनको, एक व्यक्ति भी सीखे तो न जाने कितना कल्याण हो जाएगा। ऐसे एक एक व्यक्ति को इसीलिए सिखाते थे कि इसका कल्याण हो, इसके जरिए औरों का कल्याण हो। ऐसा संत पुरुष, ऐसा कारुणिक पुरुष, उसके प्रति कृतज्ञता कैसे नहीं जागे और उसका नाम भी नहीं लें। हमें उदाहरण दिया गया, ये देखो जय कृष्ण मूर्ति है ना, सारी यही बात कहता है ना, नाम नहीं लेता ना बुद्ध का, तो कितना प्रचार हो गया उसका, लोग कितना उसको मानने लगे। बाबा हमें नहीं चाहिए ऐसा मानने वाला, हम क्या करेंगे, हमको मानने वाले बहुत हो जाएंगे, हमारी प्रशंसा करने वाले बहुत हो जाएंगे, शक्य नहीं देखेंगे तो क्या होगा, चखना है ना। तो नाम नहीं लें तो पहले ही धर्म तो गया, हम धर्मच्युत हो गए, हम में कृतज्ञता का नामो निशान नहीं, और लोगों को धर्म सिखाएंगे हम। उनको मुक्ति का मार्ग सिखाएंगे। अरे हम ही नहीं मुक्त हुए ना, हमको यश चाहिए ना, हमको ज़्यादा फॉलोअर्स चाहिए ना, हमको बड़ी प्रसिद्धि चाहिए ना, ऐसे बड़े बड़े मठ चाहिए ना, जैसे एक धम्मगिरी बना वैसे 1000 धम्मगिरी बने, ये लक्ष्य है ना, क्या धर्म सिखाएगा ऐसा आदमी? तो नहीं भाई नहीं, किसी को इस रास्ते पर चलना है, कृतज्ञता एक बहुत आवश्यक अंग है धर्म का, उससे दूर नहीं जा सकते। ये बात बिल्कुल ठीक, किसी की निंदा नहीं करेंगे, जिसमें जो गुण है, हमें कोई भी महापुरुष कैसा भी था, कोई भी संत था, कुछ था, उसकी कोई बात, सद्गुणों को याद करेंगे, उन सद्गुणों को धारण करने को कहेंगे, किसी की ओर से हो। हम बुद्ध से हमें प्राप्त हुई तो विशेष बात हुई है, औरों के पास भी थी, अच्छी बात, हमारे मन में उनके प्रति श्रद्धा है, गौरव का भाव है, उनके पास भी थी, अच्छी बात होगी। हमें तो नहीं प्राप्त हुई भाई, हमें तो यहीं से प्राप्त हुई, हमें तो इसी परंपरा से मिली, हम तो इसका एहसान मानेंगे ही, इस एहसान को नहीं मान करके हम समझेंगे कि हम तो बड़े धर्मवान हो गए, तो धर्मवान नहीं होता आदमी। धर्म में पकना है, अपने को संप्रदाय में दीक्षित करने के कोई मायना नहीं रखता, धर्म में पकना है पहला कदम है। जिन लोगों ने कुछ और शिविर ले लिए, एक दो कदम और उठा लिए, पर ये मान के चलना पड़ेगा कि रास्ता लंबा है, रास्ता लंबा है, ये दो बातें साथ रहेंगी, वेदना है और वेदना को प्रज्ञा के साथ देखना है, स्वयं अपनी प्रज्ञा के साथ देखना है। बुद्ध की प्रज्ञा बुद्ध को बुद्ध बनाएगी, किसी सिद्धार्थ गौतम में संप्रज्ञान जागा, बोधि जागी, उसने एक आदमी को मुक्त किया, दो को नहीं, केवल सिद्धार्थ गौतम ही मुक्त हुआ, दूसरा नहीं। दूसरों को प्रेरणा मिली, दूसरों को रास्ता मिला, लेकिन मुक्त वही होगा जिसके अपने अंदर से अपनी बोधि जागेगी। तो अपना प्रज्ञा तभी संप्रज्ञान, स्वयं प्रज्ञान, अपनी प्रज्ञा जागेगी, मुक्त होता चला जाएगा, मुक्त होता चला जाएगा। ये दो बातें समझ के रखनी है इस शिविर में आए हैं तो, कि वेदना कितने ही सुखद क्यों ना हो, वेदना कितने ही शांत अनुभूति वाली क्यों ना हो, जब तक नाम रूप के क्षेत्र की है तब तक दुख ही है, क्योंकि भावचक्र ही भावचक्र है, उसके प्रति आसक्ति पैदा कर देंगे, नहीं आसक्त होना है तो संप्रज्ञान को जानते रहेंगे, यों वेदना यों संप्रज्ञान, ये वेदना ये संप्रज्ञान, और कदम कदम प्रतिपद 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 चलते हुए मुक्त अवस्था पर पहुंच जाएंगे। जो जो लोग इस सभा में आए, जो जो लोग इन शिविर में बैठे, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, कदम कदम चलते हुए सारे लोग मुक्त अवस्था पर पहुंच जाएं, जो जो नहीं आए उन तक ये बात फैले, कोई संप्रदाय बढ़ाने के लिए नहीं, कोई यश प्रसिद्धि के लिए नहीं, कोई अर्थलाभ के लिए नहीं, उन तक बात पहुंचे ताकि वो बेचारे भी दुखों के बाहर निकलने का रास्ता जान जाएं, इस कल्याणकारी मार्ग की ओर चलने का रास्ता जान जाएं और मुक्त अवस्था तक पहुँच जाएँ। तो आए उनका भी भला हो, मंगल हो, कल्याण हो, उनकी स्वस्थ मुक्ति हो, और जो नहीं आए उनका भी भला हो, मंगल हो, कल्याण हो, स्वस्थ मुक्ति हो, स्वस्थ मुक्ति हो। भवत् सर्व मंगलम्। भवत् सर्व मंगलम्।